करते हैं अल्लाह ताला के पाक व बाबरकत नाम के साथ। अस्सलामु अलैकुम अजीज दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं, और अपने तमाम काम कर ठीक है, तमाम काम निपटा कर वक्त की पाबंदी के साथ हमेशा की तरह हाजिर हैं आपकी खिदमत में। और आपसे भी उम्मीद रखते हैं कि आप भी इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, देख रहे हैं ना, शाबाश, अच्छी बात है। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरा कौन साथ देता है, कौन साथ देता है? बिल्कुल गलगली प्रोग्राम में मेरा साथ देते हैं, और गलगली फोन पर बात कर रहे हैं और फिलहाल तो मसरूफ हैं और उदास भी हैं। अब देखते हैं फिर से गलगली के साथ क्या हुआ है। गलगली, गलगली, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? तुम इतना उदास क्यों हो भाई, बताओ हमें। तुम्हारा दोस्त आज जा रहे, कहाँ जा रहे? मुल्क से बाहर, किसी और मुल्क जा रहे हमेशा के लिए? ये तो खैर उदास कर देने वाली बात है जब इंसान का एक दोस्त उससे दूर हो जाता है और चला जाता है मुल्क से बाहर हमेशा के लिए। गलगली फिलहाल उदास है, आइए साथ मिलकर गलगली का ध्यान बढ़ाने की कोशिश करते हैं। गलगली हाँ, मुझे देखो, एक बात बताओ, तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम किसी दूसरे मुल्क जाओ या नहीं? तुम्हारा दिल चाहता है? नहीं, नहीं चाहता। अच्छा, तुम्हारे अम्मी, तुम्हारे अब्बू, उनका दिल चाहता है वो किसी और मुल्क जाए? चाहता है? नहीं, उन्हें अपना मुल्क पसंद है। तो गलगली को जिस मुल्क में वो खुद रहते हैं यानी उनका अपना मुल्क, उनका अपना वतन ज्यादा पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है, आओ तो इस बारे में आज हम बात करते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ गलगली, इंसान का वतन, इंसान का मुल्क उसकी पहचान होता है, ठीक है ना? सही, तो फिर जब हमारी पहचान हमारा मुल्क है तो हमारा क्या फर्ज बनता है गलगली? गलगली अरे रो मत, हमारा ये फर्ज बनता है और नहीं, अरे बाबा गलगली परेशान क्यों हो रो, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सुनो, तुमने यहाँ बटन दबाया और वहाँ से तुम्हारा दोस्त ऑनलाइन हुआ और तुम दोनों दूसरे को देख सकते हो, बातचीत कर सकते हो, चैट कर सकते हो, खैर बहुत सारी। तुम्हारा दोस्त जिस मुल्क वो गया है वहाँ की तस्वीरें तुम्हें भेजेगा, ठीक है, तुम वहाँ पर देख सकते हो उसकी चीज़ें, ठीक है, और तुम जिस मुल्क में रहते हो, अपने मुल्क पर रहते हो, जिस मुल्क पर तुम्हें फ़ख्र है, ठीक है, तुम उस मुल्क के बारे में उसे बता सकते हो, तुम्हारे मुल्क में क्या क्या हो रहा है, तुम्हारे वतन में कौन कौन सी नई नई चीज़ें हो रही हैं और किस तरह तुम्हारा वतन तरक्की कर रहा है, तुम उसे बता सकते हो। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, ठीक है, इंसान का मुल्क जो होता है, ठीक है, उसे सब चीज़ों से ज़्यादा वो प्यारा होता है, उसका वतन उसे सब चीज़ों से ज़्यादा प्यारा होता है। क्यों? जिस तरह मैंने कहा, इंसान का वतन और उसका मुल्क उसकी पहचान होता है। अगर कोई दुश्मन आता है गन लेकर, ठीक है, और हम पर हमला करने की कोशिश करता है, तो ये हमारा, उस मुल्क के बाशिंदों का फ़र्ज़ बनता है कि अपने मुल्क से वो हिफाजत करें, ठीक है ना? फिर दूसरी बात, ये हमारा फ़र्ज़ है कि अपने मुल्क के बारे में हम अपनी मालूमात को मुकम्मल रखें, ठीक है, अच्छी तरह हमें सब कुछ अपने मुल्क के बारे में पता हो, हमारी सकाफत के बारे में, और मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क में ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो देखने के लायक हैं, और दूसरों को पता के हम उन्हें यहाँ पर दावत दे सकें, और मिसाल के तौर पर अपनी तहजीब के बारे में, हर एक मुल्क का, ठीक है, एक ख़ास किस्म का, मिसाल एक ख़ास सकाफत है, ख़ास तहजीब है, ख़ास तमद्दुन है, ठीक है ना? तो इन चीज़ों के बारे में मालूमात हमें मुकम्मल करनी चाहिए। यहाँ पर गलगली की उदासी को हम दूर भगाते हैं, आप देखिए खसास के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बिल्कुल, वो जहाज जाएगा तो हम उसे बबाई करेंगे, ठीक है ना? एयरपोर्ट पे जाके, एयरपोर्ट के पास जाके बबाई करेंगे।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों। बच्चों, आज हम आपके लिए एक बार फिर एक बहुत ही अच्छा किस्सा लेकर आए हैं। ये किस्सा है हमारे आठवें इमाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से मुतालिक। होता यह है कि उस वक्त बारिश जो है वो बिल्कुल भी नहीं बरस रही होती, फूल मुरझा गए होते हैं, लोग भी मुरझा रहे होते हैं, क्योंकि जब बारिश नहीं बरसती तो गल्ला नहीं उगता, अनाज नहीं उगता, और जब ज़मीन से कुछ उगेगा नहीं तो लोग खाएंगे पियेंगे कैसे, और जब खाएंगे पियेंगे नहीं तो ज़ाहिर है दिन ब दिन कमज़ोर हो जाएंगे, लागर हो जाएंगे। तो यही हो रहा था उस ज़माने में उस जगह के लोगों के साथ, कि कहत जैसा हाल था, बहुत साल हो गए थे बारिश नहीं हुई थी, ज़मीन खुश्क हो गई थी। उस जमाने में मामून की हुकूमत थी। अब इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के पास लोग आते हैं और कहते हैं कि ए इमाम, आप तो हुज्जत खुदा हैं, आप खुदा से दुआ करें कि बारिश बरस जाए ताकि हमारी तमाम जो मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएं। इमाम जो है वो लोगों के साथ जाते हैं खुले मैदान में और अब तैयार हैं तमाम लोग और इमाम के बारिश के लिए दुआ करें। इमाम जो है वो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं लेकिन जो है कोई भी बादल नहीं आते। अब मामून जो है वो ये देख के बड़ा खुश होता है, वो सोचता है कि अच्छा है कोई भी बादल ही नहीं आए, बारिश ही नहीं बरसे, ताकि लोगों का जो एतकाद है इमाम के ऊपर, लोगों की जो मोहब्बत है इमाम से वो कम हो जाए। लेकिन ज़ाहिर है परवरदिगार तो ये नहीं चाहता था। इमाम ने जो है वो दुआ के लिए अपने हाथ फिर से उठाए और अब देखा एक दफ़ा बादल आते हैं लेकिन बरसे बगैर चले जाते हैं। इमाम कहते हैं लोगों से कि भाई ये हमारे बादल नहीं हैं, हमारे बादल अभी आए नहीं हैं। गर्ज कुछ ही देर गुजरती है कि बादल आते हैं और ज़ोर से बारिश शुरू होती है और परवरदिगार अपनी हुज्जत की दुआ को कबूल कर लेता है। मामून ये देखकर बहुत गमजदा और गमगीन हो जाता है क्योंकि ज़ाहिर उसका मनसूबा तो खाक में मिल जाता है। उसका तो मनसूबा ये था ना कि बारिश ना बरसे ताकि लोगों की इमाम से मोहब्बत कम हो जाए, लेकिन जब वो देखता है कि बारिश बरस रही है और लोगों की अकीदत में, लोगों की मोहब्बत में इजाफा हो गया है और लोग जो है वो इमाम के आमद से बहुत ज्यादा खुश हैं, तो जाहिर है वहां से चला जाता है और हाथ मलता रह जाता है। तो बच्चों, आठवें इमाम इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम की बेशुमार करामात से ये करामात में से ये एक ऐसा मौजजा था जो हमने आपको बताया। उम्मीद है आप इसको अपने जहन के गोशों में महफूज रखेंगे और अपने दूसरे दोस्तों को भी जरूर बताएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।
कहती हूँ, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारे वतन के हवाले से, हमारे मुल्क के हवाले से, जी हाँ, जिस पर हम फख्र करते हैं। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये हमारा फर्ज बनता है कि अपने मुल्क की हम खिदमत करें, ठीक है ना। खिदमत करने के कुछ मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आप एक बहुत ही मिसाल के तौर पर अपने माशरे में एक अहम किरदार निभा कर अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। आप अगर आपके मुल्क में कोई जंग वगैरह, खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मसला है, तो उसमें जाके आगे हिस्सा लेकर, मिसाल के तौर पर हिफाजत के लिए हिस्सा लेकर आप अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो आप? मुझे इंजेक्शन मत लगाना, मुझे डर लगता है थोड़ा थोड़ा। ठीक, क्या लाए हो, इंजेक्शन क्यों लाए हो तुम यहाँ पर? ओ अच्छा, आज प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे डॉक्टर गिलगिली जो यहाँ खड़े हुए हैं। डॉक्टर गिलगिली आप ठीक हैं? इंजेक्शन लेकर अपने साथ आए हैं और बिल्कुल यहाँ पर। जिस तरह गिलगिली, क्या कर रहे हो? ओ इंजेक्शन लगाने की, ऐसे लगाओगे इंजेक्शन तो बेचारा मरीज भाग जाएगा। ठीक है ना। वैसे एक बहुत ही अच्छा आइडिया यहाँ पर खलखली ने हमें दिया। देखिए डॉक्टर बनकर भी आप मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, हमें जैसा बताया कि कुछ मुख्तलिफ तरीके हैं मुल्क की खिदमत करने का। अगर आप डॉक्टर बनते हैं, जिस तरह खलखली यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा और अपनी मुल्क की खिदमत करूंगा, देखिए अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो आप उस मुल्क के बाशिंदों का ख्याल रखते हैं, उनकी सेहत का ख्याल रखते हैं। जब वो बीमार हो जाते हैं तो आप उनका इलाज करते हैं, ठीक है, उन्हें फिर से सेहत याब करते हैं। तो क्या अगर एक मुल्क में, एक शहर में, एक इलाके में, एक मोहल्ले में, पूरी मैं बात कर रही हूँ उस हवाले से, उसके बाशिंदे, वहां पर रहने वाले लोग सेहतमंद होंगे तो क्या वो अच्छी तरह काम कर सकेंगे। अच्छी तरह काम कर सकेंगे तो इसका असर पड़ेगा कहाँ पर, जी हाँ मुल्क के इक्तिसाद पर, ठीक है। और इसी तरह आपका मुल्क तरक्की 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 करेगा, ठीक है ना। मुझे डर लगता है, इसे हटाओ हटाओ गलती। ओहो खैर, तो यहाँ पर आप भी काम कर सकते हैं। आप भी अब पढ़ लिख कर, ठीक है, और एक अच्छी जॉब पाकर, एक अच्छा काम कर, एक मुस्बत काम कर आप भी अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग इंजीनियर बनते हैं और जब वो इंजीनियर बनते हैं तो वो मुल्क की खिदमत करते हैं। बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि वो पढ़ लिख कर बच्चों को जाके पढ़ा सकें, उस्ताद या टीचर बन सकें, तो एक तरह से वो ही मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। किस तरह से जनाब, जनाब वो जाते हैं स्कूल में, टाइम लगाते हैं, अपना टाइम रखते हैं बच्चों के लिए और उन्हें पढ़ाते हैं, ठीक है, उन्हें इस काबिल बनाते हैं कि आगे चल कर वो माशरे में एक अहम किरदार निभा सकें, ठीक है। अगर आपका सेहतमंद होगा अब जिस्मानी लिहाज से और नफ्सियाती लिहाज से, तो आप ये बात जो है अपने जहन में बिठा लीजिए और मेरी बात का आप यकीन कीजिए कि आपका मुल्क जो है वो सेहतमंद भी होगा दोनों लिहाज से, जैसा मैंने कहा जिस्मानी लिहाज से और आपकी नफ्सियातिया, और फिर आपका मुल्क तरक्की करता रहेगा। अब ये गन बन गया, ये गन बन गया, खैर तो ठीक है ना। और छोटे बच्चों जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे बच्चे जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप ही मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। किस तरह, बिल्कुल दिल लगाकर पढ़कर, ठीक है ना। जब अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आप मुल्क की खिदमत करेंगे। अरे देखें हिस्सा अभी, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से हमें साथ मिलकर देखना चाहिए एक हिस्सा, लेकिन इस हिस्से के बाद इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आपने बिल्कुल टीवी के सामने से हिलना नहीं है, ठीक है। कोशिश रहती है कि वो अपने वतन के लिए कुछ ना कुछ कर सके, अपने मुल्क की खिदमत कर सके, अपने मुल्क में कोई ऐसा काम कर सके कि उसके मुल्क का, उसके वतन का नाम पूरी दुनिया में, जी हाँ पूरी दुनिया में रोशन हो, ठीक है ना। हम सबकी भी यही कोशिश रहनी चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे मुल्क का नाम सबकी जुबानों पर हो, ठीक है ना। और ओ, जी अब यहाँ मेरे साथ कौन है, आप जनाब, आप कौन हैं? ओ हमारे साथ हैं कौन, उधर कमांडर गलगली साहब यहाँ पर मौजूद हैं। और गलगली, ये तुम क्या कर रहे हो? हाथ में बंदूक लिए तुम यहाँ पर? ओ जनाब, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं फौज में भर्ती होना चाहता हूँ और सिपाही बनना चाहता हूँ। और आप तो जानते होंगे फौज मुल्क की हिफाजत में एक बहुत ही नुमाया और अहम किरदार अदा करती है। फौज में जो सिपाही होते हैं वो दिन रात जाग कर हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं ताकि हम जैसे अफराद, जी हाँ, रात को आराम से चैन की नींद सो सकें। फौज, जी क्या हुआ? मैंने कुछ भी नहीं किया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं आप ही हूँ, बच्चों के लिए प्रोग्राम पेश कर रही हूँ, ठीक है ना? ओके ठीक, तो मैं यही कह रही थी, यहाँ पर सिपाही गलगली को थोड़ा सा मुझ पर शक ने का भाई हैंड्स अप, और आप क्या कर रही हैं? खैर, आपको बताती हूँ, फौज में जो लोग होते हैं, जो सिपाही होते हैं, जो फौजी होते हैं, ठीक है, वो दिन रात, ठीक है, जागते हैं मुल्क की सरहदों पर, सख्त यहाँ पर वहाँ पर कड़ी निगरानी वहाँ पर देते हैं, या खड़े होकर वहाँ पर मिसाल के तौर पर उनको ये रहता है कि भाई ऐसा ना हो कि सरहद से पार एक दुश्मन हमारे मुल्क में आ जाए, ठीक है, और हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाए। और वहाँ पर वो खड़े रहते हैं और बिल्कुल वहाँ पर हिफाजत देते हैं, वहाँ हिफाजत करते हैं हमारे मुल्क की, और उनको बस इस बात की फिक्र रहती है कि भाई कोई हमारे मुल्क को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है ना? फौज में भर्ती होना, फौज में जाना, सिपाही बनना, जी हाँ, ये एक और तरीका है जिससे अपनी मुल्क की आप खिदमत कर सकते हैं, जी हाँ, जिससे अपने मुल्क की आप हिफाजत कर सकते हैं, ठीक है। फौजी हजरात बहुत 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 ही अच्छे इंसान होते हैं, ठीक है। आपके जहन में कभी ये बात ना आए कि हाँ भाई वो लोग सिर्फ जंग वगैरह के लिए होते हैं। क्या हुआ? ओ क्या हुआ? गलगली, मैं समझी कि तुम इस तरह कह रहे हो कोई जेट आ गया हम पर हमला करने के लिए। अरे पापा क्या हो गया तुम्हें, तुम फौज में जाके ये करने वाले हो? बल्कि नहीं, तुम्हें बहुत ही संजीदगी से इस मामले के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है ना? हम मुख्तलिफ काम कर मुख्तलिफ कदम उठा कर, अब चाहे वो कदम छोटा ही क्यों ना हो, ठीक है, वो काम शायद हमारे हद तक ही क्यों ना हो, वो काम कर, ठीक है, अपने मुल्क का हम नाम रोशन कर सकते हैं। हम देखते हैं कि ठीक है, फौजी हजरात अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, ठीक है, शहीद होते हैं, ठीक है, जंग में जाते हैं, और बिल्कुल बहुत बहुत बहुत, ठीक है, दिल लगाकर, बहुत ही बहादुरी से जाकर लड़कर, दुश्मन को नाकाम कर, ठीक है, अपने मुल्क को सरबुलंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये होता है कि भाई ये हमारा मुल्क है, पहले हमारा मुल्क फिर हम, ठीक है, यानी वो अपनी जानों का नजराना देते हुए भी नहीं कतराते। उनको इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि हाँ भाई वो आके हमें मार देगा। वो हम बहुत बहादुर लोग होते हैं, बहुत ही बहादुरी से जाकर लड़ते हैं और बिल्कुल हमारी हिफाजत करते हैं, ठीक है ना? यानी हमारे मुल्क की जब वो हिफाजत कर रहे हैं, वो वतन की हिफाजत कर रहे हैं, तो दरअसल उसमें रहने वाले बाशिंदों की वो हिफाजत कर रहे हैं। तो ठीक, हम जब जहाँ कोई फौजी देखेंगे तो हम उसे यूँ सल्यूट मारेंगे और कहेंगे कि भाई आपको हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि आप हमारा और हमारे वतन और हमारे मुल्क का इतना ख्याल रखते हैं, ठीक है ना? और एक बहुत ही अच्छा आइडिया है भाई गलगली साहब कि तुम जाके फौज में भर्ती हो जाओ। लेकिन उम्मीद करते हैं कि फौज में भर्ती होने के बाद ये ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, देखें एक हिस्सा। तो देखते हैं एक हिस्सा, उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।
अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मजेदार सी चीज के जिसे खाना सबको बहुत पसंद है। बच्चों और बड़ों को सबको यकसा पसंद है वो चीज, और हम हर वक्त उसे खाने के लिए तैयार रहते हैं। मीठी मीठी और मजेदार सी इस चीज का नाम है चॉकलेट। एक ऐसी मजेदार सी चीज के जिसके खाने से हमें फौरी एनर्जी मिलती है और खुशी भी। बच्चों, चॉकलेट में कैलोरीज बड़ी तादाद में पाई जाती हैं और इसीलिए चॉकलेट खाते ही हमें ताकत का एहसास होता है। सुबह में अगर एक छोटी सी चॉकलेट खा ली जाए तो चाको चौबंद रहने में मदद मिलती है। वो बच्चे के जो चॉकलेट खाते हैं उनकी जहनी सलाहियतें बाकी बच्चों के मुकाबले में उम्मन ज़्यादा होती हैं। बेहतर तौर पर वो बच्चे पढ़ने लिखने के काम कर पाते हैं। और बच्चों, चॉकलेट की एक किस्म डार्क चॉकलेट भी है, यानी जिसका रंग सियाह होता है। बच्चों, अगर हमें चॉकलेट से मिलने वाले फवायद को हासिल करना है तो हमें डार्क चॉकलेट खानी चाहिए, क्योंकि उसके नुकसानात कम हैं और फायदे ज़्यादा। डार्क चॉकलेट हमें मोटा भी नहीं करती। अगर घर में किसी को दिल का कोई मसला है तो उसे मशवरा दें कि डार्क चॉकलेट खाए, क्योंकि डार्क चॉकलेट दिल की धड़कन को मामूल पर रखती है। बच्चों, चॉकलेट आपकी क़ुव्वत शामा को भी कवी करती है। इस तरह आपकी सूंघने की सलाहियत बेहतर हो जाती है और आप बहुत सी चीजों को दूर से ही सूंघ सकते हैं। बच्चों, चॉकलेट को हम वैसे भी खा सकते हैं और चॉकलेट वाला दूध भी पी सकते हैं। चॉकलेट का मीठा भी बनाया जाता है। चॉकलेट की आइसक्रीम भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन बच्चों, रात में कभी भी चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इम्कान है कि रात में चॉकलेट खाने से आपके दांत हो जाएंगे खराब। चॉकलेट को कोशिश करें कि दिन में खाएं, और वो भी खाना खाने के बाद अच्छी तरह से ब्रश कर लें, ताकि तमाम नुकसान पहुंचाने वाले अवामिल का खात्मा हो सके।
पहुंच गए एक बार फिर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। इस हिस्से में हम क्या करते हैं जी? हम वही करते हैं जो पहले वाले हिस्सों में कहते, बातचीत करते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और यहाँ पर गिलगली फिर से मसरूफ हैं। ठीक, देखते हैं क्या करें। गिलगली क्या कर रहे हो? अरे, ये तो हमारे मुल्क का नक्शा है। ठीक, और तुम क्या करने के? गिलगली यहाँ पर अपने मुल्क के नक्शे को बगौर देख रहे हैं, मुताला कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में कौन कौन सी अहम जगहें हैं, ठीक है, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं दूसरों को बता सकता हूँ और उन्हें बता सकता हूँ कि भाई आइए हमारे मुल्क आकर ये चीज़ें देखिए। बिल्कुल, एक ही बहुत अच्छा तरीका है। अक्सर ये होता है, हम कहते हैं मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, ठीक है, हम कोई मिसाल के तौर पर डॉक्टर, फौजी, टीचर वगैरह बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे अहम नुक्ता ये है, आपको आपके मुल्क के बारे में पूरी मालूमात पता होनी चाहिए, ठीक है ना? सही। यहाँ पर ये शहर बहुत गर्म है, ठीक है, और वो ठीक है, वो कह रहे हैं कि इस तरफ जो है काफ़ी ठंड पड़ती है। बिल्कुल ठीक ठीक। और यहाँ पर ठीक है, जंगली जानवर, जंगल, ठीक सही, यहाँ पर जंगलात हैं। बिल्कुल गिलगिली, बहुत अच्छी बात है। हर मुल्क में मुख्तलिफ सूबे होते हैं, मुख्तलिफ शहर होते हैं, मुख्तलिफ इलाके होते हैं, ठीक है। हर शहर हर सूबे की अपनी एक खास बात होती है। जिस तरह गिलगिली ने इशारा किया, शायद एक सूबा है जहाँ पर सख्त गर्मी पड़ रही है, ठीक है, एक सूबा है जहाँ पर बड़ी ठंड है, एक सूबा है जहाँ पर दरिया वगैरह और कहीं जंगलात हैं। इस हवाले से हमें अपनी मालूमात रखनी चाहिए। हर मुल्क में बहुत सी तारीखी इमारतें भी होती हैं, कुदरती मनाजर के साथ साथ तारीखी इमारतें भी होती हैं, ठीक है। हम उनके बारे में जानकर, उनके बारे में मालूमात हासिल करके मिसाल के तौर पर बहुत सी ऐसी जगहों पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्त, जो आपके दोस्त मिसाल के तौर पर कोई ऐसा दोस्त है जो मुल्क से बाहर रहता है, उसे बता सकते हैं, उसे दावत दे सकते हैं कि आओ भाई हमारा मुल्क देखो, हमारा मुल्क एक बहुत खास मुल्क है, हमारे मुल्क की तहजीब व तमद्दुन एक खास तहजीब व तमद्दुन है, एक खास सकाफत हमारे मुल्क में है ना, तो आपको इन चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ऊपर की तरफ, शाबाश, जी हाँ बिल्कुल। जब आपको आपके मुल्क के बारे में मालूमात ही नहीं होंगी, हाँ, ओ ट्रेन पर बैठ के जाएंगे। बिल्कुल, बहुत से ऐसे आपके शहर होते हैं जहाँ पर आपने ट्रेन में जाके जाना होता है, वहाँ पर कहीं कहीं हवाई जहाज़ वगैरह नहीं जाते, ठीक है ना। इन चीज़ों के बारे में आपको पूरी पूरी मालूमात रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये होगा, जब आप मालूमात रखेंगे, कोई आपसे सवाल पूछेगा, भाई बताओ अपने मुल्क के बारे में हमें, तो आप बड़े फखर से अपने मुल्क के बारे में बताएंगे उन्हें, ठीक है, बताएंगे भाई हमारा मुल्क ऐसा है ये है वो है, और फखर से बताएंगे अपने दोस्तों को अपने मुल्क के बारे में जब आपके पास मुकम्मल मालूमात होंगी। अभी गर्मी हो रही है यहाँ पर, ओह इसको अपने सर को नहीं इसे लाओ। बिल्कुल शाबाश। तो बच्चों उम्मीद करूंगी कि यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप किसी खास मिसाल इलाके में रहते हैं, ठीक है, इलाके के बाद एक शहर, शहर के बाद एक सूबा, सूबे के बाद एक मुल्क, हमेशा याद रहे अपने मुल्क पर हमेशा फ़ख्र कीजिए, ठीक है। आप जिस मुल्क में रह रहे हैं फ़ख्र कीजिए उस मुल्क के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो आपकी पहचान है, ठीक है, आपका मुल्क आपकी पहचान है, ठीक है। देखिए आपको जब कोई बुलाता है, मिसाल के तौर पर हम देखते हैं भाई कहीं कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, कोई ये नहीं कहेगा कि मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में रहने वाले शख्स जो हैं अली, नहीं, वो कहेंगे हिंदुस्तान में रहने वाले बाशिंदे हम सबको, ठीक है, वो बुलाएंगे, हम सबसे मुखातब होंगे। तो फिर अपने मुल्क का ख्याल रखना है, उसकी हिफाजत करनी है, ठीक है ना, उसकी खिदमत करनी है ताकि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन रहे, ठीक है ना। तो फिर अपना बहुत ख्याल रखना। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, यानी जाने का वक्त आ गया है, और आपसे लेंगे इजाज़त इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहे। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।